सबसे प्यार से चलना सीखो जी,
दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी,
प्रेम की बोली बोलो, प्रेम की बोली बोलो, प्रेम से रहना सीखो जी,
दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी,
दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी।
जहाँ पर बिछे हो कांटे कलियां वहाँ बिछा दो, कांटों को भी कली बना दो, रोतों को हंसा दो, हो जहाँ जहाँ पर बिछे हो कांटे कलियां वहाँ बिछा दो, कांटों को भी कली बना दो, रोतों को हंसा दो, गम का प्याला पी कर हो, गम का प्याला पी कर प्यास बुझाना सीखो जी,
दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी, दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी।
शांति। तो हम सब कई दिन से जैसे रिलेशन में कई प्रकार की बातें सुनते आए हैं, आर्ट ऑफ रिलेशन, तो उसके अंतर्गत आज हम रिलेशन में संबंधों में मधुरता की क्या जरूरत है, मधुरता हमारे जीवन में कैसे आएगी, मधुरता के बल से हम संबंधों को कितना अच्छा बना सकते हैं। आज सबके जीवन में, चाहे लौकिक जीवन हो चाहे अलौकिक जीवन में, इस प्रकार की बातें देखने में आता है कि संबंधों में जिस प्रकार की तृप्ति, जिस प्रकार की खुशी, जिस प्रकार की संतुष्टता की आवश्यकता है, उतना हम कर नहीं पाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कुछ गलती कर बैठ जाते हैं, तो गलती कर रहे हैं उसके बारे में भी हमारे पास थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है कि संबंधों में मधुरता तभी आता है और संबंधों की मधुरता का फायदा उसी को मिल सकता है जिसने जीवन में कुछ लक्ष्य और कुछ उद्देश्य लेकर के चलते हैं। नहीं तो दिन प्रतिदिन संबंध जुटना चाहिए, अलौकिक संबंधों में इजाफा होने चाहिए, वो नहीं हो पाता है और हम धीरे धीरे अकेले होते जा रहे हैं। अकेलापन आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बढ़ जाता है तो स्पिरिचुअल डिप्रेशन का कारण भी हो सकता है। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए संबंधों में मिठास कैसे पड़ेगा, संबंधों में मिठास बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संबंधों में मिठास का फायदा किसको मिल सकता है, तो संबंधों में मिठास के लिए हमने क्या कुर्बानी दी है। क्योंकि आज हम सबसे अलग होने के लिए नहीं है, सबसे जुड़ के रहने के लिए है। तो सबसे जुड़ते हुए भी अपनी साधना को बरकरार रखने के लिए हमें यहाँ पर साधना में सभी जुटे हुए, तो इसीलिए मधुबन तो बेहद का घर है। यहाँ तो कोई कहते हैं कि आप लोग तो ऐसी दुनिया में रहते हो, फिर भी हमारे पास में भी तो कई सारे हजारों लोगों के साथ में कनेक्शन होता है। बाहर में तो 150 150 200 लोग भी कोई कनेक्शन में आते होंगे, रिलेशन में आते होंगे, लेकिन अपना बेहद का ये परिवार हर स्टेट की आत्माओं के साथ कनेक्शन रिलेशन यानी कम्युनिकेशन चलता है। तो जहाँ भी जो भी रहे उसका इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन हम अपने संस्कार से, अपने स्वभाव से, अपने असली नेचर से ही संसार में अपनी छवि छोड़ते हैं। इसलिए हम जहाँ जितना बड़ा महफिल होता है, अगर सीखने का लक्ष्य और उद्देश्य होता है तो वहाँ और ही ज़्यादा सीखने में मौका मिलता है। इसलिए हम सब संकीर्णता के जो दायरा है उसको कैसे खत्म किया जा सके, तो इसलिए संबंधों में मधुरता लाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसमें भी कई सारे पॉइंट हमने चिंतन करके निकाले थे, तो वो सारी बातें हैं। क्योंकि जिसके पास में जो रहम दिल का संस्कार है, रहम दिल का जो गुण है, वही व्यक्ति ही संबंधों में मधुरता कायम रख सकता है। जिसके पास में रहम का संस्कार नहीं है, गुण नहीं है, और जिसने स्वयं के ऊपर रहम नहीं किया है और जो दूसरों के ऊपर रहम नहीं कर सकता है, इसीलिए बाबा कई बार मुरली में कहते हैं अपने ऊपर रहम करो। तो आज हम सब सबसे पहले अपने ऊपर ही रहम करते हैं। तो अपने ऊपर जब रहम करते हैं हम फूल हो जाते हैं, भरपूर हो जाते हैं। तो ये परमात्मा की जो देन है, परमात्मा की जो शक्ति है, ऊर्जा है, हम दूसरों को बांटे बिना रह नहीं सकते, क्योंकि ये नेचुरल संस्कार है आत्माओं की। हम भर गए तो दूसरों को देना ही है। तो इसलिए हम जितना अपने ऊपर रहम करेंगे दूसरों के ऊपर भी सोते रहम कर सकेंगे। तो दूसरा है कि अपनापन का अनुभव हम स्वयं भी करें, स्वयं से और दूसरों को भी कराए। उसमें जैसे कि रूहानी प्यार आता है, परमात्मा प्यार हमारे में कितना भरी है, हमने कितना भरे हैं, तभी दूसरों को अपनापन दे सकते। आज हर जगह पर ये कंप्लेंट सुनने को मिलता है कि अपनापन का एहसास नहीं होता है, अपनापन का अनुभव नहीं होता है। तो इसका यही कारण है कि हम इतना फूल नहीं हुए हैं और अपना हमने समझा नहीं है, स्वयं को भी और दूसरों को भी। तो अपनापन जब तक दे नहीं सकेंगे तो लोग नजदीक आकर के उस तरीके से हमसे व्यवहार नहीं करेंगे, और हम भी किसी के नजदीक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यह भी अच्छा कनेक्शन जोड़ने का एक माध्यम है। तो अपनापन जिसके पास में होता है लोग उसको खूब याद करते हैं, उसके इर्द गिर्द लोग होते हैं, घूमते हैं, कुछ पाने की इच्छा तमन्ना रखते हैं। जिसके पास में रूखा सूखा लाइफ होता है तो खुद ही सूखा हुआ है, तो दूसरों को भरपूर कैसे कर सकता है। इसलिए अपनापन, रूहानी प्यार, आत्मिक दृष्टि, ये सब हमारे पास होना जरूरी है। तभी वो आत्मा जा करके संबंधों में मधुरता को कायम रख सकता है। तो तीसरे में हमने निकाले थे कि पालना देने की कला, पालना देने की शक्ति हमारे पास चाहिए। हमारे पास ये शक्ति अगर होगा, ये कला अगर होगा, तो दूसरों को भी समय दे सकेंगे, उसकी बातों को सुन सकेंगे, उसको उसके करीब आने का भी ये बहुत बड़ा साधन है हमारा, पालना देना। तो आज कोई व्यक्ति भी किसी के पास में देखा जाए, एक तो सबसे पहले टाइम के अभाव है सबके पास में। ये तो टाइम है, फिर भी वो देने की अंदर में हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम खुद ही हमारे पास में ये कई सारे कमी कमजोरी रहते हैं। तो पालना देने के लिए हमारे पास में इस प्रकार की ज्ञान से भरपूर जब होंगे तभी हम दूसरों को पालना दे सकेंगे। दूसरों को पालना देने के लिए तो जैसे माता बहनों के लिए बाबा ने आगे रखे हैं, ये कला सबसे ज़्यादा हमारी माता में और बहनों में होता है। फिर भी वहाँ भी कुछ न कुछ तो रहता ही है मन के अंदर, तो इसके लिए हमें सबसे पहले पालना देने की कला को विकसित करना है। क्योंकि हद में हमने बहुत कुछ पालना दिए हैं संसार, फिर अलौकिक में भी उसके लिए सब कुछ हमको करना पड़ता है। इसीलिए आगे हमने निकाले थे जो विशाल दिल होगा, जिसका बड़ा दिल होगा वही दूसरों को इस प्रकार की संबंधों में जोड़ सकता है। बड़े दिल चाहिए, विशाल दिल चाहिए, सबको समाने की क्षमता अंदर में हो, और बड़े दिल वाले ही इस चीज को कर सकता है। जिसके पास में छोटा सा दिल है, कंजेस्टेड है, खुद ही सूखा हुआ है उसका दिल, तो दूसरों को समा नहीं सकता है। तो दूसरों को समा नहीं सकेंगे तो दूसरों को पालना भी हम नहीं दे सकेंगे। इसलिए बड़े दिल होना, इसलिए हमारी दादी प्रकाशमणि सबको ऐसे दिखाती थी तो सब पूरा मंच में कितना उमंग उत्साह और खुशी आती थी, और सबको अपना। बाबा भी सबके लिए ऐसे ही करते हैं, कई बार हम सबने देखा है। तो सबको समाने की क्षमता, और क्षमता जिसके पास में होगा तो हर बात को समा भी सकता है, संभाल भी सकता है सबको। तो इसीलिए बड़े दिल होना भी जरूरी है। तो बड़े दिल बनाने के साथ हमारे पास में आगे निस्वार्थ वृत्ति भी चाहिए। जिसके पास में स्वार्थ होगा और शर्त होगा वो ये काम नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी न किसी रूप से हमारे अंदर कई सारे जन्म के संस्कार पड़े हुए हैं, और वो कहीं न कहीं किसी कुने कंदरे में छिपे हुए हैं, और कुछ भी थोड़ा बहुत करते हैं तो हमारे अंदर आ ही जाता है कि ये चीज हमको मिलना चाहिए, इससे हमें कुछ मिल जाएगा, कुछ आस अपेक्षा रखने लगते। तो वो जो जैसे कि इतना सेवा करने के बाद में निस्वार्थ भाव से नेक कर्म करके दरिया में डालने की जो बातें आती है वो खत्म हो जाता है, और उसमें कहते हैं कि इतना अच्छा हलवा बनाया लेकिन उसके थोड़ी बीच में रेती डाल दी हमने, अरे हलवा भी कहते हैं। तो ऐसे ही जीवन को खटास कर देता है, और वो चीजें फिर किसी को खाने लायक रहने लायक नहीं होता है, रखने लायक नहीं होता है, मन में कुछ न कुछ चलता ही रहता है। इसलिए निस्वार्थ भाव भी चाहिए हमारे अंदर, अगर जीवन में एक दूसरों के साथ इस प्रकार के व्यवहार हम करने चाहते हैं और संबंधों में मधुरता लाने चाहते हैं, तो यह भी उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है ब्राह्मण जीवन में। तो इसके लिए फिर आगे हमने निकाले थे दूसरों के दर्द और मर्म को समझने की जिसके पास में क्षमता है वही व्यक्ति संबंधों में मधुरता ला सकता है। संबंधों में मधुरता लाने के लिए, क्योंकि आज हर व्यक्ति के अपने प्रकार के दुख है, दर्द है, पीड़ा है, कोई संस्कारों से, कोई आदतों से, कोई किस बातों से घिरा हुआ है, तो उसकी बातों को ठीक से हम सुन करके उसको थोड़ा सा अच्छी रीति से हम उसको सुझाव सहयोग नहीं देते हैं तो फिर उसके लिए भी हम कुछ नहीं कर सकते। आज जानते हैं ये बातें सुनने को मिलता है, किसी का कोई सुनता ही नहीं है, दर्द की बातें, पीड़ा की बातें सुनने वाला कोई चाहिए, तो ये कंप्लेंट बनी रहती है। इसलिए हमको ये दर्द और मर्म को समझने की ताकत चाहिए हमारे पास में, तभी इस संबंधों को वो कायम रख सकता है। तो इसके बाद में हमें सरल चित्त होना पड़ेगा और नम्र चित्त होना पड़ेगा। सरल चित्त जब तक नहीं होंगे, ट्रांसपेरेंट लाइफ नहीं होता है अंदर बार एक, तब तक व्यक्ति समझ नहीं पाता है अपने को, और दूसरों को भी हम समझा नहीं सकते। तो भीतर बार एक ही होना पड़ेगा। बाबा ने कई प्रकार के मुरली में टाइटल दिए, अंदर बार अलग अलग होता है, तो ये खपनाक लोग हैं, खपना के टाइटल में बाबा ने डाला है। तो इसलिए हमें भीतर बार एक समान जब होंगे तभी हम फिर संबंधों में मधुरता ला सकेंगे। नम्र चित्त अर्थात नम्रता भी ब्राह्मण जीवन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति की पहचान, व्यक्ति के उसकी पर्सनालिटी क्या है वो शब्दों से लोग पता करते हैं, और जैसे उसके पास मिठास होगा बोलने की, अच्छी दिल से ऐसी भावना होगी, तभी लोग उसको पसंद करते हैं। भीतर बार अलग है और बातें मीठी मीठी करते हैं तो नजदीक जाने से लोग कुछ और सोच लेते हैं कि अपना काम बनाने के लिए मीठी मीठी बातें करता है, तो इस प्रकार की कंप्लेंट न हो। तो इसीलिए हमें नम्र चित्त भी होना पड़ेगा और फिर सरल चित्त भी होना पड़ेगा। और जो फोल्डिंग लिथ नेचर और मोल्डिंग नेचर हमारे जीवन में चाहिए। तो मोल्डिंग माना बाबा ने जो मोल्ड होता है वही रियल गोल बनता है, बाबा ने कई बार सलूगन में भी बताते हैं। और फोल्डिंग अर्थात परिस्थिति और समय अनुसार अपने को ढाल सके, परिवर्तन कर सके। क्योंकि आज बहुत सारी बातें ऐसी होती है, किसी के मन में कुछ बातें आता है तो बातें आने के बाद में कई बार आमने सामने हो जाते हैं हम सब। तो बहुत सारी बातें उसमें देखने में आती है, तो कभी कभी तो जैसे कि लड़ने के जैसे नौबत आता है। तो जिस समय जिसका दिमाग गर्म हुआ होता है हमारे लिए तथा दूसरों के लिए, हम भी कभी बन जाते हैं। तो थोड़ा से किनारा करके अपने को रखना चाहिए उस समय, उस घड़ी, उसका पारा जब तक डाउन नहीं होता है तब तक हम थोड़ा सा उस सब बातों से परहेज रखें अपने को। तो कब किस समय क्या करना चाहिए ये भी हमारे पास में होने चाहिए। तो उसके बाद में जिसके पास में अचल अडोल स्थिति वाला होगा, स्थिति को मजबूत बनाए होंगे जिन्होंने, जिसने स्थिति के ऊपर काफी काम किए होंगे, और जिसके पास में स्थिति और अवस्था अच्छी होगी वही संबंधों में मधुरता ला सकता है। और जिसके पास में ये लंबा समय का अभ्यास नहीं होगा, खुद ही हलचल में होगा, और जो अप डाउन उसकी चल रही होगी तो फिर उसको दूसरे व्यक्ति देखते ही पहचान लेते। तो कभी कभी हम सब ने देखा है, और कोई व्यक्ति को जैसे कि कोई सीनियर है उसको थोड़ा सा लगता है कि सुबह शाम नदी का आए थोड़ा हम शांति करने का होता है, तो वो अपनी बातों में बिजी है, किसी न किसी बातों में उसका संकल्प से पता चल जाता है अभी ये ओम शांति स्वीकार करने के लायक नहीं है ऐसा लगता है। तो फिर अपने को भी अपना दिशा बदलनी पड़ती उस समय भी। इसीलिए हमको अपनी स्थिति इतना बना लिया जाए, किसी भी परिस्थिति आ जाए हमारा स्थिति हलचल में न आए, तो वही व्यक्ति ही संबंधों में मिठास ला सकता है, मधुरता ला सकता है। तो आगे हमने निकाले थे कि बड़ी बातों को छोटी करने की ताकत भी चाहिए, क्योंकि आज छोटी बातें होती है, ब्राह्मण जीवन में इन्फॉर्मेशन इतना ज्यादा फैलता है, उसको चढ़ा के बढ़ा के अपना भी ऐड करते हैं उसमें, तो फिर वो बहुत उग्र रूप ले लेता है। तो इसीलिए हम सबको बड़ी बातों को छोटी करना और व्यर्थ को समर्थ में बदलना, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, और छोटी मोटी बातों को उतना ज्यादा महत्व न दे करके किसी को ठीक रिश्ते से डायरेक्शन दिशा दे सके। और कोई व्यक्ति ऐसे छोटी छोटी बातों में उलझा हुआ रहता है और किसी को सुनाने जाता है तो उल्टे हम उसका दिमाग ना खराब करके उसको कैसे ट्रीट कर सके और उसको सही रास्ते पर ला सके, इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। क्योंकि माहौल बनाने के लिए हर व्यक्ति का यहाँ पर आवश्यक सपोर्ट चाहिए और हर व्यक्ति इसका हकदार है। जहाँ वातावरण बिगाड़ करके 10-20 लोगों का दिमाग खराब करके माहौल बिगाड़ने से जो उसका पाप हमारे ऊपर चढ़ेगा, तो उस सब बातों से थोड़ा सा अभी संगठन में हमें परहेज रखना होगा। क्योंकि ये बातें अगर हम नहीं करते हैं तो 10 को सुना गए तो 10 के 100 हो जाते। तो फिर हम यहाँ वातावरण बनाने के लिए आए या बिगाड़ने के लिए आए, हम स्वयं के ऊपर भी चेक करें। तो ऐसी बातों में थोड़ा अगर परहेज रखते हैं तो हम जीवन में मिठास भी ला सकते हैं। तो फिर आगे हमने निकाले थे कि कुछ चीजें सुनी सुनी बातों पर कभी विश्वास न करें, अगर मिठास लानी है तो आज सबसे ज्यादा कान फूकने वाले, पट्टी पढ़ाने वाले बहुत मिलते हैं। उल्टे पलटी बातें लेकर के छोटी सी बातें एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और दूसरों को जाकर के ये सब बातें पीट करते रहते हैं। तो इसीलिए सुनी सुनी बातों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी राजा नहीं बन सकता है। क्योंकि हमारी दादियों ने दीदियों ने यहाँ पर यही फॉर्मूला अपनाए थे जीवन में। तो सुनी सुनी बातों में कभी विश्वास करते नहीं थे, दो चार लोगों को पूछ करके उसका राय जान करके समझ करके यथार्थ निष्कर्ष क्या है है यार नहीं है, ठीक सही बातें है, रंग है, वो सब बातें पड़ताल करते थे। तो आज ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा कमजोरी ये दिखता है कि सुनी सुनाई बातों में सबसे ज्यादा हम फॉलो करते हैं, और क्योंकि हम अंदर से कमजोर हैं उस बात को रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो मन तो चाह रहा होता है कि ऐसी बातें कोई आके सुना दे और दिन भर का मसला मिल जाए दो चार लोग जान मिले, हम थोड़ा सा उसके दिमाग में भी डाल सके कि ऐसी बातें हैं। तो ये सब बातें हम सबको ऊंची स्थिति और ऊंची अवस्था में ले जाने नहीं देता है और संबंधों में मधुरता नहीं आ सकती है। तो ये व्यक्ति ऐसी प्रकार की संस्कार वाला जो व्यक्ति होगा ना, तो आगे जाके अलग थलग पड़ जाएगा क्योंकि किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, और जो माहौल बिगाड़ा है, स्थिति बिगाड़ी है दूसरों की, तो उसका भी एक्स्ट्रा हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो इसलिए हमें इस चीज को अगर करना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आगे हमने निकाले थे जो संबंध में मधुरता लानी चाहते हैं उसके पास में सहन शक्ति और समाने की शक्ति बहुत ज्यादा चाहिए। तो इसीलिए आज हम सब मम्मा की जो जीवन कहानी में पढ़ते हैं और सुनते हैं कि उन्होंने किसी की बातें किसी को नहीं सुनाया और किसी के आगे बताया नहीं, उन्होंने पहले सहन किया फिर समाया उन्होंने। इसीलिए आज संसार के सभी ब्राह्मण भी देख नहीं पाए, उनको चित्र में देखा है लेकिन दिल से सबके मन में निकलता है कि मम्मा बोल के माँ की पालना जिस रूप से उन्होंने दिए थे आज भी हम सबको कितना काम करता रहता है। तो इसीलिए इस चीज को भी सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, सहन करने की शक्ति हमारे पास में कितना है, और सहन करने के बाद में समाने की भी शक्ति चाहिए। अगर समाने की शक्ति अगर नहीं होगी तो कभी न कभी पालते पालते विस्फोट हो जाएगा विस्फोट हो ही जाएगा। इसलिए सहन करने में मम्मा ने बोला था कि सहन करने में कोई उसने 10 बार सहन कर लिया, एक बार तुम इसको सहन माने उसको रिजेक्ट करो, ऐसा नहीं, सहन करने का कोई हद नहीं होता बोला। तो इतनी ज्यादा दिल में कितनी शक्ति चाहिए, छोटी सी बातों से काम नहीं चलता है ये सब बातें करने के लिए। इसीलिए संबंधों में जो मधुरता की जो बातें होती है तो इसके लिए सबसे इसके ऊपर काम करना पड़ेगा अगर इसके ऊपर काफी टाइम अगर नहीं देंगे और इस कमी कमजोरी के चपेट में अगर हम आते रहते हैं तो हम दूसरों को ये काम है ना प्रूफ दे नहीं सकेंगे। तो इसके ऊपर में भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके आगे हमने निकाले थे जो होल्डिंग नेचर होता है आप आत्माओं के, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ व्यवहार उसने दिखाए तो इसे पकड़ के रखते हैं कि जैसे कि उसकी जैसे दादे परदादे ने दिया हुआ प्रॉपर्टी है उसके जैसे कि कहते हैं ना उसके लिए दिया हुआ जैसे कि दौलत है। कहीं ऐसे देखा हमने 45 वर्ष पहले किसी ने कुछ बोल दिया तो अभी तक भी लोगों ने पकड़ के रखा लौकिक में हमने देखा। एक जगह प्रैक्टिकल ऐसी घटना देखी हमने, 45 वर्ष पहले जो उनका लड़का डेट हो गया था तो दूसरी रिलेटिव में वो माता जी ने बोला था पिछले साल की दिवाली तो फलाने व्यक्ति ने शरीर छोड़ के मेरा दिवाली बर्बाद हो गया, इस बार ही इसका लड़का मर गया कहीं से उसने बोल दिया किसी को, वो मैसेज घूम के उसके साथ आ गया। तो अभी 45 वर्षों से भी वो माता उस चीज को पकड़ के रखती रखी है, छोड़ी नहीं। अभी तो दोनों ज्ञान में चल रहा है इसलिए छोड़ दिया होगा कि पता नहीं तो इस तरीके से हम वो होल्डिंग नेचर जो पकड़ के रखते हैं हम सब, तो उससे जो चीज रखते हैं ना उससे वायरस पैदा होते है उस संकल्प के जरिए, तो उसके कारण से वो विचार चलते रहते हैं हमारे, और उसको हम खाद और धूप और पानी देते रहते और उसका जड़ ऐसे मजबूत हो जाता है ना, उखाड़ के फेंकने में तो बहुत ताकत लगता है, छोटे मोटे कुलाड़ी से पापड़े से उखाड़ा नहीं जाता, उसके लिए तो डोजर ही लगानी पड़ेगी। डोजर लगाने की ताकत अगर हमारे पास में नहीं होगा तो हमारे लिए तो जैसे कि अनादि संस्कार बन जाएगा रावण की जो जायदाद है वो हम इतने पाल के रखते हैं। तो तो इसीलिए आगे हमने निकाले थे माफी करना, सबको माफ देना, माफी भी करना है स्वयं से भी दूसरों को भी, और माफी देना भी है लेना भी है। कभी कभी मध्यस्थता की जरूरत पड़े तो भी हमें बीच में खड़े होकर के उन सबको दोनों तरफ से मिलाना है, क्योंकि ये भी एक हम सबको, हम सब इतने कोई संपूर्ण बने नहीं, सारे दिन भर में जीवन भर कई सारी बातें हुई है, तो माफी जब तक नहीं देते हैं स्वयं को और दूसरों को भी, तब तक वो विचार हमारे मन में चलते रहते हैं। और वो विचार ऐसे चलते हैं कि पता ही नहीं चलता है कब आया और कब गया और कितना समय मेरी बर्बादी हुई, ये समझ नहीं आती। इसीलिए रात को जैसे हम दरबार लगाते हैं तो उससे पहले सबको माफ करना है और माफी लेना भी है। हमने भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करके रखा है, चाहे मन से, चाहे संकल्प से, चाहे बोल से, व्यवहार से, कहीं ना कहीं हुई है ये सब बातें। तो इसीलिए हमको इसके ऊपर में भी थोड़ा सा काम करनी पड़ेगी, नहीं तो ये संस्कार इतने कड़क हो जाएगा कभी झुकने का नाम ही नहीं लेती आत्मा। देहवान सिर के ऊपर सवार रहता है और छोटा होने नहीं चाहते, छोटे बनने नहीं चाहते। तो ये भी हमारे जीवन के जैसे कि बड़े दुश्मन है, इसीलिए हमको ये भी कुछ काम हर दिन करनी पड़ेगी। तो आगे जाकर के हमने निकाले थे, और जिसके पास शुभ भावना और शुभ कामना के स्टॉक भरपूर है ना, वही आत्मा ये काम कर सकती है, क्योंकि शुभ भावना बहुत बड़ी शक्ति है आध्यात्मिकता के लिए। तो ये सबसे बड़ा हथियार है हमारा, संसार की सारी समस्याओं को खत्म करना, स्वयं का, दूसरों का, और सबके लिए क्लीन रास्ता बना के रखना। कोई है ना, न मेरा न तेरा, सबके बराबर, इस भावनाओं को है ना बढ़ाने के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, शुद्ध संकल्प, तभी योग लगता है। नहीं तो ऐसे हल्के फुल्के योग लगाना तो टाइम पास के ही यात्रा होती है। इसीलिए हमें इसके ऊपर में भी हम जब जितना करते हैं कर ही रहे हैं, करना ही है, फिर भी अंडरलाइन करते हैं तो ज्यादा ध्यान रहता है इस पर। अगर हमने फोकस दिया उस बातों पर तो यह काम करना इजी हो जाएगा। तो इसके पास बाबा ने 15 सितंबर की संडे की मूर्ति में बोला था, मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर पावरफुल होंगे तभी आगे बढ़ सकेंगे। कुमारों के लिए बाबा मिल रहे थे, तो मास्टर नॉलेजफुल भी होना पड़ेगा, मास्टर पावरफुल भी होना पड़ेगा। नॉलेज तो हो गया कि ये ऐसा है, पता हो गया है, लेकिन पावर होगा तो उस बात को डिलीट कर सकेंगे। हाँ, पहले नॉलेजफुल होना ही बड़ी बात नहीं है, नॉलेज तो देखते सुनते घूमते फिरते ऐसे हम सबको हो ही जाता है, लेकिन उस बात को डिलीट करना, उसको फिनिश करना और मन को शांत करना, तो इसके लिए अगर हमारे पास में ये नॉलेज चाहिए तो बाबा ने उसमें बोला था, जितना बाप का नॉलेज आपके पास में है उतने माया का भी नॉलेज आपके पास में होना पड़ेगा। माया क्या चीज है, जैसे कि यहाँ 101 सुशील भाई ने मुरली के द्वारा जो निकाले थे माया के शतकम, तो ये माया कैसे आती है, कहाँ से आती है, किस रूप से आती है, क्या करने के लिए आती है और क्या करती है, इसके बारे में फुल नॉलेज नहीं होगा। श्री बाबा ही हम करते रहेंगे और माया हमको परेशान करती रहे, तो इसके लिए हमको इसमें भी माया के भी नॉलेजफुल बनना है। जितना बाबा ने इसमें टाइटल दिया है, माया भी सर्वशक्तिमान है, तो बाबा भी सर्वशक्तिमान है, लेकिन हम बाबा के बच्चे हैं तो माया का पूरा नॉलेज होगा तभी हम मास्टर सर्वशक्तिमान कहला सकेंगे। तो इसलिए हमें मास्टर पावरफुल भी बनना है तो मास्टर नॉलेजफुल भी बनना है। और ये काम अगर हमने नहीं किया तो फिर हम जैसे कि उसकी गोदी में ही होते तो माया अजिंगर कच्चा खा जाती है उसके बाद तो इसके बाद में न्यारा और प्यारेपन का भी बैलेंस चाहिए हमको, क्योंकि किसी को कल्याण करने जाते हैं ना, बाबा कहते हैं डूबते होकर निकालने जाते हैं लेकिन खुद ही डूब जाते हैं। और दूसरों को सिकड़ी फूकने जाना होगा ना, अपने मुंह और दाढ़ी संभाल के जाना पड़ता है। दूसरों का कल्याण करना हम जाएंगे और अपने अकल्याण हो जाए, तो इसके ऊपर में भी हमें सदा ध्यान रखना पड़ेगा। और जितना न्यारा होकर के प्यारा बनेंगे उसमें उतना ज्यादा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ज्यादा प्यारा बन करके न्यारा बनने लगेंगे वो न्यारा बनना इतना कठिन हो जाएगा जैसे कि बड़ा तपस्या करनी पड़ेगी। इसीलिए पहले बाबा ने यही शिक्षा दिया है, पहले न्यारे बनो फिर प्यारे बन सकेंगे, और प्यारे बनेंगे तो फिर सबको प्यार बांट सकेंगे। तो न्यारा बनना माना संपूर्ण बाबा के बच्चे, बाबा कमांड है, और इसका हमने कई अभ्यास किए हुए, तो इसीलिए फिर आगे हमने निकाले थे साक्षी दष्टा की भावना। तो साक्षी दष्टा अर्थात हमको पता है कि दिन है तो दिन है, रात तो रात है। अब जितने ज्यादा संगठन में रहते हैं तो सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पता होता है किसी के पॉजिटिव रोल होता है, किसी के नेगेटिव होते हैं, सब प्रकार के लोग होते हैं। जैसे सागर में मछली से लेकर के मगरमच्छ सब सब होते हैं, तो उसमें हमको नॉलेज होना चाहिए कि इसका संस्कार ऐसा है, तो हमें कैसे अपने को सेफ रखना है। तो उनके साथ में हमको पता तो है ये ऐसा है, लेकिन हमें इतना साक्षी होना पड़ेगा उसकी कोई भी बातें, उसकी कोई भी चीजें हमारे मन में आकर के घर करके ना बढ़ जाए, तो उसके ऊपर में। और दृष्टा बनकर के देखना भी है, साक्षी बनकर के सुनना भी है। तो ये सुनते हुए भी न सुनना, देखते हुए भी न देखना, इस स्टेज को कहते हैं बाबा न्यारा और प्यारा स्टेज। तो ये भी हमारे पास में होना चाहिए, और ये होगा फिर हम तभी उस चीज को कायम रख सकेंगे, संबंधों में मिठास और मधुरता ला सकेंगे। तो उसके आगे निकाले थे हमने कि पक्षपात रहित व्यवहार करना पड़ेगा। जहां पक्षपात होता है, भेदभाव होता है, तो व्यक्ति कोई भी इस प्रकार की बातें करना चाहेगा ना, व्यक्ति उसको रिजेक्ट कर देंगे। और कई सारी बातें हैं बड़े संगठन में, तो भाषा से लेकर के संस्कृति से लेकर हर प्रकार की बातें आती, और ये सब बातें संबंधों में मधुरता लाने नहीं देता है। छोटी सी बातें दिखाई देती है उससे पक्षपात की, बड़े छोटे धनी गरीब पढ़े लिखे न पढ़े, ये स्टूडेंट थोड़ा कमजोर है वो थोड़ा कम पढ़ा हुआ है, ये थोड़ा धनवान है तो इसको थोड़ा खातिरी करे, इस प्रकार की भावना जहां पर पनपनाता है तो वहां पर कोई चीज की प्रगति नहीं होती है। और तीखा टिप्पणी और कई सारी बातें सुनना पड़ता है, और उसकी वो हमने खुद ही दरवाजा खोल के रखी हुई है, कोई लोग आकर के मुझे बोले। इसीलिए जो विशाल दिल और बेहद का दिल जो बातें आई, इसमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और हमें याद की यात्रा में भी बिजी रहना है, और चिंतन मंथन में जितना बिजी रहेंगे हमारी ऊर्जा हमारी एनर्जी बनी रहेगी, और हम जैसे भी जिस रूप से भी परिस्थिति समस्या विघ्न आते हैं तो उसके ऊपर हमें फेस करने में बहुत ताकत मिलती है, क्योंकि हमारा फाउंडेशन तो ये है, जो बाबा ने दिए हुए जो मर्यादाएं हैं श्रीमंत है, जिसको हम फॉलो करते हैं, वो हमारे सेफ्टी का साधन है। और ये सब चीजों को ताक में लगा करके, इस सारी बातों में समझौता करके दूसरों को खुश करना, ये भी मर्यादा के विपरीत है। बाबा ने इसके ऊपर भी बोला है कि पहले हम ये चीजें करें जो हम उस जीवन में इसके रग रग में धारण हो, वो चीज नस नस में हो हमारे, जहां कोई सभी कर्म इंद्रियों में ज्ञान समाया हुआ हो, तभी फिर दूसरों को सुनाएंगे बताएंगे तो लोगों को अच्छा लगता है। तो नियम मर्यादाओं को जहां हम ताक में लगाते हैं तो लौकिक वाले भी कभी प्यार नहीं करते, और वो देखते रहते हैं हमारी एक एक बातों को। एक भाई जी का हमने देखा था जीवन में, कुमार थे, तो कभी कभी घर में जाते थे, तो घर में जाने के बाद में ना वो किसी के भी हाथ के बनाए हुए खाते थे, भाभी के हाथ से मम्मी के हाथ से तो खाना कोई बात नहीं है, लेकिन खा लेते थे। और घर में जाने के बाद कभी भूल से अमृत जरा उड़ते ही नहीं थे। तो उनका जो फादर था कि ये इस मार्ग में लगाए, लेकिन निशानी तो कुछ दिखाई नहीं देती। तो फिर माँ बाप का जब जाने का दिन नजदीक नजदीक होते हैं तो उनको भी लगता है कि बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाए, बच्चों को अपनी टांग पर खड़ा कर दिया जा सके, उनको एक टेंशन बनी रहती थी। तो फिर इस सब प्रकार की निशानी देखने के बाद में उसका पिताजी ने सैकड़ों किलोमीटर आगे से आकर के वो दुकान करते थे, उन्हें डेरा डाल दिया 15 दिन तक, रोना चिल्लाना तड़पना दुकान में, या उसे मचा दिया। तो फिर लास्ट में करते करते एक दिन उन्होंने उसको अपना बना करके रख दिया, उस दुनिया में ले गए उन्होंने खींच के। और उनके बड़े भाई से हमने बात की थी, दूसरी भाभी आ गई तो इस तरीके से फिर उनके भाई से हमने थोड़ा सा बातचीत किया था कि क्या कारण है, इतने साल से भाई ज्ञान में चल रहे थे, आप लोगों ने उसको अपना बना लिया। तो उन्होंने इतनी अच्छी बातें सुनाई कि भाई आप तो मैं यहाँ कई दिन से आया हूँ, आपको सुबह भी योग में देखता हूँ, शाम को भी देखता हूँ, सारा दिन भर में इतनी सारी यहाँ बातें चलती है आप अपने रेगुलर दिनचर्या में और खान पान में मर्यादाओं में इतने पक्के हो कि आपको देख करके हम सबको भी खुशी होती है। लेकिन ये हमारा भाई ना आपके हमारे घर में आता, अपना घर आता है तो इससे कोई निशानी दिखाई नहीं देती और बड़ी बड़ी बातें करता है, इसीलिए हम सबको डाउट हो गया आगे जाके ये मार्ग में चल नहीं सकता है, नहीं चल सकेगा, इसीलिए ये सब काम करना पड़ा। तो इस तरीके से आज हम देखते हैं जो व्यक्ति किसी को रूल एंड रेगुलेशन लागू करना चाहता है, पहला उसको खुद को ही खुद ने धारण किया होने चाहिए, उसने माना हुआ होने चाहिए, उसके जीवन में ये सब चीज दिखाई देती है तो दूसरों को कहने में भी इजी होता है, दूसरों को सुनाने में भी मजा आता है, हिम्मत भी होता है, अथॉरिटी हमारे पास में रहता है। तो इसीलिए संबंधों में मधुरता लानी है, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में, चाहे सेंटर में चाहे कहीं भी हम रहते हैं, ये चीज तो हमको पल पल जरूरत है और हर पल जरूरत है। और इसी के संतुलन कहीं बिगड़ जाता है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ हम इसके भुगतने की शिकार बन जाते हैं। इसीलिए इसके ऊपर में मधुरता लाने के लिए इतनी बहुत सारी बातें हम सबने सुने और जो चिंतन की बातें थी, तो इसमें भी हमने हर दिन अटेंशन भी देते हैं और आगे इसको फुल अंडरलाइन दे करके जो करते हैं कहते हैं तो करके दिखाना भी है, यह दृढ़ संकल्प रखते हुए। ओम शांति आप सबके बीच से, ओम शांति।
सबसे मधुर संबंध हो, सबसे सरल व्यवहार हो, वो स्वर्ग से भी कम नहीं, जहाँ प्यार ही बस प्यार हो। सबसे मधुर संबंध हो, सबसे सरल व्यवहार हो, वो स्वर्ग से भी कम नहीं, जहाँ प्यार ही बस प्यार हो। सबसे मधुर संबंध हो, सबसे मधुर संबंध हो।